हॉल में पसरी हुई खामोशी अब धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। हर किसी की नजरें जैसे एक ही सवाल पूछ रही थीं, विश्वनाथ क्या चाहेगा। तभी सीढ़ियों से हल्के कदमों की आवाज आई। इतनी सुबह सुबह सब लोग एक साथ? सबकी नजरें मुड़ी। अदिति सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, हल्की नींद भरी आंखें, लेकिन चेहरे पर वही तेज समझदारी। जैसे ही उसकी नजरें सामने खड़े लोगों पर पड़ी, अक्षरा, उसके मम्मी पापा और माहौल की गंभीरता, वो एकदम रुक गई। कुछ सीरियस बात हो रही है क्या? अदिति धीरे धीरे नीचे आई और रत्ना देवी के पास खड़ी हो गई। दादी, क्या हुआ? रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अदिति, अक्षरा के मम्मी पापा रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता? अदिति ने भौहें से कोड़ दी। किसका? अगले ही पल उसकी नज़र अक्षरा पर पड़ी और शायद बिना बोले ही सब समझ में आ गया। ओ, उसके होंठों से हल्की आवाज निकली। मतलब पापा और अक्षरा? अक्षरा ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ सेकंड तक अदिति बस उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फाइनली वो धीरे से बोली, किसी ने तो हिम्मत दिखाई। अक्षरा की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार उसमें शर्म नहीं, एक सुकून था। अदिति उसके पास आई और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। आप सीरियस है ना? उसने हल्के लेकिन साफ स्वर में पूछा। अक्षरा ने बिना झिझके जवाब दिया, पहले से ज्यादा। अदिति ने सिर हिलाया, जैसे उसने ये जवाब पहले से उम्मीद किया हो। गुड। फिर वो मुड़ी और सबकी तरफ देखकर बोली, मुझे तो ये रिश्ता सही लग रहा है। उसकी बात सुनकर अक्षरा के मम्मी पापा के चेहरे पर हल्की राहत आई। रत्ना देवी ने भी पहली बार थोड़ा सहज होकर सिर हिलाया, लेकिन अदिति वहीं नहीं रुकी। उसने हल्का सा भौहें चढ़ाई और बोली, लेकिन सभी की नजरें फिर उसकी तरफ मुड़ी, क्या पापा इसके लिए तैयार हैं? उसका सवाल सीधा था और उतना ही सच्चा। मतलब वो शादी नहीं करना चाहते हैं। ये कहते ही माहौल फिर से थोड़ा भारी हो गया। अक्षरा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजरें तुरंत रत्ना देवी की तरफ गईं। अब जवाब उन्हीं के पास था। रत्ना देवी कुछ सेकंड तक चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कप टेबल पर रखा और सीधा बैठ गईं। उनके चेहरे पर अब वो नरमी नहीं थी जो अभी तक थी। अब वहां सिर्फ एक फैसला था, उसे मानना ही होगा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी सख्ती थी कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अक्षरा के लिए ये शब्द जैसे सीधे हवा में ठहर गए। अदिति ने हल्की हैरानी से माँ की तरफ देखा। दादी, आप? मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ अदिति, रत्ना देवी ने उसकी बात काट दी। बहुत हो गया उसका अकेलापन और उसकी जिद। उन्होंने एक पल के लिए नजरें नीचे की, फिर धीरे से बोली, हमने भी गलती की थी जो उस वक्त ये रिश्ता नहीं होने दिया। अक्षरा के मम्मी पापा की आंखें झुक गईं, लेकिन अब रत्ना देवी ने फिर से नजरें उठाई। अब अगर मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। अक्षरा की आंखों से एक आंसू चुपचाप निकलकर गाल पर बह गया। ये आंसू दुख का नहीं था, ये उम्मीद का था। अदिति कुछ सेकंड तक माँ को देखती रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो मतलब इस बार पापा की नहीं चलेगी? रत्ना देवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, बिल्कुल नहीं। हॉल में पहली बार हल्की सी हंसी गूंजी, माहौल थोड़ा हल्का हुआ। अक्षरा की माँ आगे बढ़ी, रत्ना जी, सच कहूँ तो हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सपोर्ट करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? रत्ना देवी ने सहजता से कहा। अक्षरा को मैं बचपन से जानती हूँ। उन्होंने प्यार से उसकी तरफ देखा, और जहां तक विश्वनाथ की बात है, उनकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। वो जितना बाहर से सख्त है, अंदर से उतना ही अकेला है। ये सुनकर अक्षरा का दिल हल्का सा कांप गया। उसे अचानक पिछली रात याद आ गई, वो इमरजेंसी, वो अचानक चले जाना, वो खालीपन। लेकिन अब उस खालीपन में एक उम्मीद जुड़ चुकी थी। अदिति ने अचानक ताली बजाई, ओके, तो फिर तय रहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। हम लोग ये रिश्ता फाइनल मान सकते हैं, वो शरारती अंदाज में बोली, बस पापा को मनाना बाकी है। अक्षरा हल्का सा मुस्कुरा दी, वो भी हो जाएगा, उसने धीमे लेकिन भरोसे से कहा, क्योंकि इस बार उसने खुद से ज्यादा जैसे दुनिया को सुनाया, मैं पीछे नहीं हटने वाली। रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उन्होंने उसे सिर्फ घर की मेहमान नहीं बल्कि इस घर की होने वाली बहू की नजर से देखा। ठीक है, उन्होंने कहा, आज शाम को ही विश्वनाथ से बात करेंगे। अक्षरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। शाम अब सिर्फ एक वक्त नहीं था, वो उसकी जिंदगी का फैसला था। हॉल में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। थोड़ी देर पहले जहां सन्नाटा था, वहां अब हल्की हल्की बातें, उम्मीद और आने वाले कल की आहट थी। अदिति अक्षरा के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तैयार रहना। अक्षरा ने उसकी तरफ देखा। किसके लिए? अदिति हल्का सा मुस्कुराई। पापा को मनाना इतना आसान नहीं होगा, फिर आंख मारते हुए बोली, लेकिन ड्रामा तो मजेदार होगा। दोनों हल्का सा हंस पड़ी और उस हंसी में डर भी था, उम्मीद भी और एक नई शुरुआत की आहट भी। ऑफिस का केबिन शांत था। कांच की दीवारों से छनकर आती हल्की धूप टेबल पर बिखरी फाइलों पर गिर रही थी। विश्वनाथ अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा गंभीर, नजरें सामने, और उसके सामने श्यामली खड़ी थी, हाथ में फाइल। कुछ कहने के लिए होंठ खुले लेकिन शब्द जैसे अटक गए हों। मिस्टर राठौर, ये, वो बोलने ही वाली थी कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, माँ। विश्वनाथ ने हल्का सा भौहें से कोड़ते हुए कॉल उठाई। हाँ माँ। विश्वनाथ, उधर से रत्ना देवी की सीधी आवाज आई, एक जरूरी बात करनी है। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता और बढ़ गई। जी कहिए। अक्षरा के मम्मी पापा आए थे। विश्वनाथ की नजर अनायास ही सामने खड़ी श्यामली पर गई। वो अब भी वहीं खड़ी थी लेकिन अब उसकी आंखें सिर्फ उसी पर टिकी थी। उन्होंने तुम्हारे और अक्षरा के रिश्ते की बात की है। कुछ सेकंड के लिए केबिन में जैसे सन्नाटा जम गया। विश्वनाथ का जबड़ा हल्का सा कसा। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा है। वो मना करने ही वाला था, तभी उसकी नजर फिर से श्यामली पर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो कुछ सुनना चाहती हो या शायद कुछ रोकना चाहती हो। और बस उसी पल विश्वनाथ के अंदर कुछ बदल गया। उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर दी। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्यामली का हाथ हल्का सा कांप गया। फाइल उसके हाथों में और कस गई। विश्वनाथ वहीं नहीं रुका। वैसे भी अक्षरा अच्छी लड़की है, उसने जानबूझकर शब्दों पर जोर दिया। संभली हुई, समझदार और खूबसूरत भी। हर शब्द सीधा श्यामली के दिल में चुभ रहा था। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। चेहरा स्थिर था लेकिन अंदर सब कुछ हिल चुका था। फोन के उस पार रत्ना देवी की आवाज आई। सच में तू मान गया? जी माँ, विश्वनाथ ने ठंडे स्वर में कहा। आप जैसा ठीक समझे। कॉल कट। केबिन में फिर वही खामोशी लौट आई लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। विश्वनाथ ने धीरे से नजर उठाई। श्यामली अब भी वहीं खड़ी थी लेकिन अब उसकी आंखें झुकी हुई थी और उंगलियां फाइल के कोने को कसकर पकड़े हुए। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। सीन जैसे ठहर गया और उस ठहराव में एक दिल चुपचाप टूट चुका था।